ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾಮಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗರ ಜಾತಂ ಸಗಣ ರಘುನಾಥನ್ವಿತಂ ಹಂಸ ಜೀವಂ ಸಾಧ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತಿ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ ತತ್ ಕಾಂಚನ್ ಗೌರಾಂಗೀ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. पिछली क्लास में हमने क्या चर्चा की थी उसका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा. अच्छा है आप लोगों ने जो लिखा
दूसरों के द्वेष ना देके गुण देखने चाहिए और एक्टिविटी भी पूरी
दूसरे को दोष नहीं देखना चाहिए और
गुण देखने चाहिए और अपने गुण देखने के लिए एक्टिविटी करो
और
द्वेष करने वाले की सेवा करनी चाहिए जिससे कि उसका द्वेष हमारे प्रति जो है वो कम
हो. और
वृंदावन
भिन्न नहीं
है, एक समान है क्योंकि इसलिए
उसको
वृंदावन माना जाता है. बारह जो वृंदावन है वो वहां पर भी है. बाहर से देखने में
नजदीक है लेकिन अंदर से वृंदावन है. अंत कृष्ण भैर गौर
हमारे अंदर कोई कमी होती है तभी हम दूसरों में दोष देते हैं.
क्यों?
अपनी गलतियों को
छुपाने के लिए। जब हम किसी का दोष बता देते हैं तो उसका ध्यान भटक जाता है, वो अपने दोष को पर ध्यान चला जाता है तो हमारे दोष नहीं देखेगा, है ना। तो ये कारण से लोग दूसरे को फॉल्ट फाइंडिंग इसलिए भी करते हैं लोग, ठीक है। और
इसमें अपने बताया था बलराम जी के बारे में कि वो अपना जो विस्तार है भगवान की सेवा के लिए करते हैं, लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक उन्नत मतलब भक्त है तो वो डिस्टेंस बलराम जी कम कर देते हैं ताकि वो
किस कॉन्टेक्स्ट में था?
ये जो सनातन गोस्वामी जी को परिक्रमा करते थे।
नहीं तो मैं तो एग्जाम्पल दिया था, कॉन्टेक्स्ट क्या था उनको याद है, प्रश्न क्या था? तीर्थ से संबंधित था ना, क्योंकि तीर्थ स्थान में निवास टॉपिक था, तो सर ने पूछा था कि तीर्थ स्थान में निवास, लेकिन इतना दूर लोग चलते कैसे थे, परिक्रमा कैसे करते थे, और
तीन शक्ति के बारे में, संजनी शक्ति, राजनी शक्ति और
संजनी शक्ति। वैसे भगवान की 16 शक्तियां हैं, वैसे अनंत शक्तियां हैं, 16 उनमें से मुख्य हैं, और उनमें 16 में से भी जो तीन जो हैं वो अत्यंत मुख्य हैं, संधनी, संवित, अल्लाधनी। संवित शक्ति को कौन देखता है? वासुदेव कृष्ण। और संधिनी शक्ति को बलराम जी, बलदेव तत्व भी कहा जाता है उसको। अल्लाधनी शक्ति को श्रीमती राधा रानी। ये चार्ट है ना, ये कहाँ गया? इसको पढ़ी कभी बैठ के, क्या है ये? फोटो नहीं है कुछ, इसको गोलोक चार्ट लिखा गया, गोलोक चार्ट है। इसमें देखेंगे ना तो आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जो संसार है उसका पूरा वर्णन है, फिर इस प्रकार सृष्टि हुई, सृष्टि का कौन सा भाग जो है हम रहते हैं, हम इस भाग में ब्रह्मांड में कितने प्लैनेटरी सिस्टम है, कितने प्लैनेट्स हैं, ग्रह कितने हैं, पृथ्वी में से एक है, ठीक है। फिर ऊपर के लोगों में क्या होता है, नीचे के लोगों में क्या होता है, आध्यात्मिक लोग में कौन कौन से लोग हैं, ये सब का वर्णन इसमें दिया है। इसमें देखिए ध्यान से, ये कोई फोटो नहीं है। और
सारंग नाम का व्यक्ति था,
कौन?
सारंग नाम का व्यक्ति था।
हाँ।
वो दीक्षा लेने के बाद सारंग मुरारी हो गए, तो उनको वो किसी को गुरु दीक्षा नहीं देते थे, उनके गुरु ने आदेश दिया कि जाओ कल सुबह अगर कोई मिले तो उसको आप दीक्षा देना, तो ये नदी के किनारे गए
उनको नाम क्या था जिसको दीक्षा दिया? चैतन्य नाम दिया उनका, चैतन्य मुरारी ना। और तो मुरारी नाम से फेमस हो गए, लेकिन इनका नाम सारंग से सारंग मुरारी कैसे हो गया? मुरारी के सारंग, सारंग मुरारी। और ठीक बात है। और बस बाकी समय ईर्ष्या द्वेष में निकल गया, नहीं ठीक है। तो आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। भक्ति रसामस सिंधु, हमने अभी तक कौन सा किया है? तीर्थ स्थान में निवास हो चुका है टॉपिक, पृष्ठ संख्या है 60। उसके बाद है अगला टॉपिक है जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना, जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना। नारदी पुराण में निर्देश है कि यदि कोई भक्त गंभीरता पूर्वक भक्ति करना चाहता है तो उसे आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि न तो भक्ति के नियमों की उपेक्षा की जाए, न भक्ति के उन आदेशों को स्वीकार किया जाए जिन्हें सरलता से संपन्न न किया जा सके। उदाहरणार्थ यह कहा जाता है कि नित्य हरे कृष्ण मंत्र का माला पर कम से कम 1,00,000 बार जप किया जाए। 1,00,000 मतलब 64 माला लगभग होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि मैं उनके घर प्रसाद ग्रहण करूंगा जो लखपति है। लखपति कौन है? जो 1,00,000 नाम जप करते हैं। किंतु यदि यह संभव ना हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जाप में कमी कर लेने चाहिए। सामान्यतः हम अपने शिष्य को प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करने की संस्तुति करते हैं और इसे पूरा करना चाहिए, किंतु यदि कोई 16 माला का भी जाप नहीं कर पाता तो उसे चाहिए कि अगले दिन इसको पूरा कर ले। उसे इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि वो दृढ़ता से इसका पालन नहीं करता तो वह सही प्रमाद का दोषी होगा। भगवान की सेवा में यह अपराध है। यदि हम अपराधों को बढ़ावा देंगे तो फिर भक्ति में प्रगति कैसे कर पाएंगे? अच्छा तो यह होगा यदि अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने नियम को स्थिर कर लिया जाए और निश्चित रूप से इस व्रत का पालन हो, इससे आध्यात्मिक जीवन अग्रसर होगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं नारद पुराण से कि बताया गया कि यदि कोई भक्त गंभीरतापूर्वक भक्ति में करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना आवश्यक। अब नारद पुराण में बताया तो प्रभुपाद जी ने इसको और स्पेसिफाई कर दिया कि कितना आवश्यक है, क्या चीज। हर वस्तु की मात्रा हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होती है ना। कोई दो चपाती लेता है तो कोई तीन लेता है ना। कोई 100 माला कर सकता है तो कोई 10 माला कर सकता है, अनुसार अलग हो। लेकिन प्रोग्रेस हमेशा करना चाहिए, उन्नति करने के लिए थोड़ा थोड़ा बहुत प्रयास करते रहना चाहिए। अब ऐसा समझ लीजिए, जब पहली बार आया तो हमारी जो कैपेसिटी थी चैंटिंग करने की कितनी थी, एक माला। फिर बोले दो माला करो, प्रयास करो, तो दो माला का प्रयास किए, दो होने लगा, दो से तीन, 6, 10, 8 ऐसा करके जो भी बढ़ता गया। फिर हम कहाँ चले गए, 16 पर। कई लोग ऐसे वक्त बोलते हैं हम 16 से ज़्यादा करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर नियमित रूप से करना चाहते हैं तो। कई लोग ऐसे हैं, पर क्या करना चाहिए, पूछ के करना चाहिए। पूछने की आवश्यकता क्या है, जब यहाँ पर लिखा ही है तो कोई बोल सकता है, लेकिन पूछने के लिए आवश्यकता ये है कि कभी कभी हम नहीं समझ सकते कि हमारी कैपेसिटी क्या है। जैसे कि बच्चों को नहीं पता रहता वो कितनी मात्रा भोजन करेगा, माँ उसे खिलाती है, बोलती से ज़्यादा खाएगा तो बच्चा बीमार हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं खिलाती है। या कम खाता है फिर भी जबरदस्ती खिलाती है क्योंकि भूख से परेशान रहेगा, होता है ना। बच्चा तो नहीं खाना चाहता है लेकिन जबरदस्ती खिलाती है। इसलिए निर्देशन की आवश्यकता है, यहाँ तक कि इस वस्तु में कि क्या चीज़ कितना आवश्यक है। बिना निर्देशन के हमें नहीं पता चलेगा हमें क्या चीज़ आवश्यक है, क्योंकि हमारा मन जो है वो हमारे अनुसार नहीं चलता है, हमारे मतलब आत्मा के अनुसार नहीं चलता है। मन की गति कोई और है, मन का हिसाब किताब कुछ और है, मन के डिमांड कुछ और है। इतने बजे हमारा मन क्या डिमांड करता था, सोना, रजाई नरम नरम हो, वातावरण गरम गरम हो, वाह है ना। हम सोते रहे, बच्चे सोचते हैं कि सर्टिफिकेट ऐसी मिल रहा है, रिजल्ट ऐसी आ जाए 99.9999। काम करने वाले सोचते हैं कि रजाई के अंदर ही कोई नोट घुसा कर रख दे, थोड़ी गर्मी और आ जाए। दुकान खोलने वाले सोचते हैं कि कोई दुकान खोल दे, हम सोते रहे, एक भाई खोल दे, दूसरा भाई सोते रहे, है ना। हम यही सोचते हैं, लेकिन फिर भी यह आना होता है। क्यों आना होता है, कि आपको मार्गदर्शन मिल रहा है उन्नत भक्तों से, आप वरिष्ठ भक्तों से, तो आप आते हो, क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट है, वास्तविक रिक्वायरमेंट है, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि एक बच्चा, उसको भूख लगती है लेकिन वो रोता है, उसको पता नहीं कि उसे क्या हो रहा है, उसको क्या हो सकता है, तो सिर्फ रोता है, तो माँ को पता है कि वो क्यों रो रहा है। वैसे वरिष्ठ भक्तों को पता है कि वो दुखी क्यों है, भक्त क्यों दुखी है, उसको क्या आवश्यकता है। जैसे कि मंदिर में एक भक्त है, वो बोले प्रभु जी मैं 16 माला भी करता हूँ, 4 नियम का पालन भी कर रहा हूँ, मंदिर पूरे प्रोग्राम कर रहा हूँ, फिर भी इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, इतना आनंद नहीं मिल रहा है। तो प्रभु जी हैं मोहन प्रभु जी, उन्होंने कहा कि तुम्हारे एक प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर दूंगा, तुम सेवा नहीं कर रहे हो 8 घंटा, जाओ। तो उन्होंने ग्रंथों का वितरण करने को भेज दिया। जो ग्रंथ का वितरण करने इतने खुश थे, हमने महसूस किया कि मैराथन में सब भक्त खुश रहते हैं क्योंकि सब बिजी रहते हैं, ग्रंथों को बांट रहे हैं, अन्ना सेवा कर रहे हैं, खुश रहते हैं। तो ये कारण है कि क्या हमें आवश्यक है, ये कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है गुरु की, क्या त्यागना चाहिए, कितना हम लोग करना चाहिए, ये हम खुद डिसाइड करते हैं तो हम फंस जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, निर्देशन में करना चाहिए। इसलिए हर वस्तु को बढ़ाना हो या घटाना हो पूछना चाहिए, है ना। जैसे कि माता जी डाइट स्टार्ट किए थे ना, खाने चले गई माता जी, तो उनका दूध बुनक का स्टार्ट हुआ, होटल की दवाई स्टार्ट हुई, तो उन्होंने काफ़ी पूछा मुझसे 4-5 बार, फिर जो शुरू कर दूँ मेरी मंगल माता जी का और उनका भी, प्रभु जी का भी, सीताराम प्रभु जी का भी, कि खाना है कि नहीं करना है कि नहीं करना। तो ये अच्छा स्वभाव है ना, पूछना चाहिए। नहीं तो हम कभी कभी क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं, बाद में फंस जाते हैं, बोलते हैं प्रभु जी अब तो फंस गए। पूछने से इतना पता चल जाता है कि हमारा नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, है ना। क्योंकि हम तो हमेशा फायदा ही चाहते हैं, कोई नुकसान चाहता है नहीं, तो पूछने वाले को एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होता। उदाहरण के लिए मैंने कई बार बताया है कि आप एक यहां से मान लीजिए एक स्टेशन जा रहे हैं, आपने एक ऑटो पकड़ा, ऑटो वाले को एड्रेस नहीं पता, आपको नहीं पता, फिर बोले चलते रहो कोई दिक्कत नहीं है, तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। आपको बार बार जब पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, जितना ज्यादा पूछेंगे उतना भटकने के चांसेस कम होते हैं ना, और जितना आप सोचते हैं कि नहीं अपनी मर्जी से चलूंगा, तो भटकने के चांस बढ़ जाते हैं। कोई को लगेगा प्रभु जी पूछने से लेट होंगे, घूमने से तो वापस ही नहीं आ पाओगे, लेट तो बहुत दूर की बात है। गलत रास्ते पर चले गए, मान लीजिए आपको एक लाइन से मुड़नी थी, मुड़ना आपको, और मुड़ के पूरा सिस्टम अलग हो जाएगा, अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं सोचे, और आपने वहां पूछा नहीं, पूरे लेट हो रहा है ना। इधर से हम सब द्वारका जा रहे थे, हम सब जैसे जा रहे थे कृष्ण भगवान पूरे थे, तो उन्होंने बोले इधर मुड़ लो, मैंने बोले मुझे लग नहीं रहा गलत रास्ता है असल, नहीं इधर मुड़ लो, मुड़ ले तो एयरपोर्ट पहुंच गए, एयरपोर्ट का दर्शन करते हुए नीचे उतरे, और फिर सामने में एक साक्षात पुलिस का दर्शन हुआ, प्रभु जी बेल्ट नहीं लगाए हुए थे, बोले रुक लो, रुके, बोले जी मैंने बोला क्या हो गया, तो बोलते कि आपके बगल में बैठे महाराज ने लगाया नहीं है बेल्ट, ऐसा उन्होंने कहा, तो मैंने बोला क्षमा कर दी, सब ने हाथ जोड़ लिया, तब देखे अंदर सारे भक्त ने छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, लेकिन नुकसान हुआ ना, और हमारा डिले भी हुआ, हम लेट भी पहुंचे, सारे भक्त पहुंच गया था, हम सबसे लेट पहुंचे। क्यों हुआ? कि हम पूछे नहीं थे, मार्गदर्शन से नहीं चल रहे थे। तो ऐसा हर बार होगा, हर बार होता हमारे साथ, हमारी चीज में डिले हो जाते हैं। पूछ पूछ के करना अच्छा है, पूछने में हो सकता है समय लग जाए, कभी कभी उत्तर भी जल्दी नहीं मिलता है, ऐसे भी होता है कई बार, आप पूछते जा रहे हैं पीछे पड़े हुए उत्तर नहीं मिलता। लेकिन याद रखिए, गलत जाने से अच्छा है कि देरी से जाए, कोई दिक्कत नहीं। गलत रास्ते में जाने से अच्छा है थोड़ा देरी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही रास्ते पर जाएंगे। देर है पर दुरुस्त है बोलते ना, कम से कम आए तो। अब मान लीजिए आपने किसी से पूछा नहीं, ट्रेन में चढ़ गए। एक बार हम हावड़ा मुंबई ट्रेन से जा रहे थे, तो हावड़ा मुंबई ट्रेन जो है ना, वो बिलासपुर के कहीं पर ना क्रॉस करती है, दोनों ट्रेन एक साथ आती हैं, से टाइमिंग भी की है और छूटने का टाइम भी है, पर अलग अलग दिशाओं में। तो जब मैं, हम लोग ट्रेन में ही बैठे हुए थे, तो एक बंगाली व्यक्ति चढ़ा और हमारी सीट पर आके बोला, आप लोग यहाँ कैसे बैठे हो? ट्रेन चलना शुरू हो गई, बोलते मेरी सीट है, बोला आपकी सीट है, हम लोग यहाँ बैठे पूरा जर्नी करके आए हैं, कहाँ से आपकी सीट हो गई? क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात नहीं आएगी ना, गलत ट्रेन में चढ़ चुका हो। उसने क्या किया, वो टिकट दिखा रहा है, हम टिकट देख रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, बर्थ नंबर सब कुछ पता चल रहा है, ट्रेन नंबर सिर्फ एक अक्षर अलग होगा, बस लास्ट वाला 1 या 2 होगा। वो बहुत बहस किया, टीटी को बुला लिए, सब कुछ आ गए, CRPF वाले आए, लड़ाई झगड़ा जैसे हो गया, पर ट्रेन चली रही है, ट्रेन चलते 2 घंटे हो गए। उसको जाना था मुंबई, वो हमारे साथ वो कोरबा तक पहुंच गया, सोचो आगे। तो जब टीटी क्या करते ना, वो बुद्धिमान होते ना, हर एंगल से देखते हैं, उससे जब गाइडेंस लिए कि भाई क्या गड़बड़ कहाँ है, तो पता चला कि वो नंबर गलत है ट्रेन का, तो बोले आप गलत ट्रेन में चढ़ गए। तो बोले ट्रेन कहाँ जा रही है? बोले ट्रेन तो ये हावड़ा जा रही है। हावड़ा जा रही, मैं तो हावड़ा से आ रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले ऐसा हो सकता है कि दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर चढ़ी थी, आप गलत ट्रेन में चढ़ गए। और उस सोचिए, बोलते तभी बोले मेरी पत्नी कहाँ की दिख रही है, मेरा सामान नहीं दिख रहा है, मेरे बच्चे नहीं दिख रहे, वो सब कहाँ चले गए? मैं चिल्ला रहा हूँ उनसे, बोले वो ट्रेन में है, उधर पत्नी रो पीट के हाल खराब होकर पति कहाँ रह गए। तो जल्दी में आपको पूछना चाहिए, देखना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए। जल्दी में चढ़ के कितना नुकसान होगा, फिर अगले स्टेशन उतरे, वहाँ से उन्होंने ट्रंक कॉल कराया, दूसरा स्टेशन में उसको रोका गया, पत्नी को उतरवाया गया, वगैरह वगैरह जो भी। तो अब कितना डिले हो गया, नुकसान कितना हुआ ना। तो वैसे ही है कि हमें पूछ पूछ के करना चाहिए। तो यहाँ वही बात पर है कि कोई भी नियम हम अपने जीवन में अपनाए हैं उसके बारे में कन्फर्म करें, व्रत का पालन करें तो कन्फर्म करें कि भाई हम लोग अब इससे निर्जल व्रत रखेंगे एकादशी में। किसी से पूछा था आप निर्जल रखने लायक है कि नहीं, जबरदस्ती हम जिम्मेदारी ले लेते हैं कभी कभी। और उसके बाद पालन कभी कभी बोलते हैं कि हम पालन कर रहे हैं चातुर्मास का। किससे पूछा था चातुर्मास के लिए? अगर बिना पूछे भक्ति का अंगों का पालन करते हैं तो सिर्फ आपको पुण्य कर्म प्राप्त होते हैं, पूर्ण फल मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, भक्ति है ही नहीं। जो भी कार्य भक्ति में आप करते हैं अगर वो गुरु के द्वारा निर्देशित नहीं है, भक्तों के द्वारा निर्देशित नहीं है, तो उससे सिर्फ पुण्य मिलता है, भक्ति उन्मुखी पुण्य। पुण्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्म उन्मुखी पुण्य, उन्मुख मतलब प्रस्तुत करने वाला, कर्म उन्मुख पुण्य, ज्ञान उन्मुख पूर्ण पुण्य, और भक्ति उन्मुख पुण्य। ये कभी कभी भक्ति जात, कर्म जात और ज्ञान जात बोलते, जात मतलब उत्पन्न, भक्ति उन्मुख पुण्य। तो तीन पुण्य होते हैं, कर्म और ज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो पुण्य होता है, कर्म उन्मुखी पुण्य, ज्ञान उन्मुखी पुण्य और भक्ति उन्मुखी पुण्य। कर्म और ज्ञान उन्मुखी से उन्मुख होने वाला पुण्य जो है इस भौतिक संसार में नष्ट हो जाता है, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म पर ट्रांसफर नहीं होता। होता भी तो वैसा नहीं होता है, जितना जहां से किया है वहां से खत्म स्टार्ट नहीं होता है। और भक्ति करने वाला जो पुण्य होता है, जितना आपने पुण्य किया उसके अगले पॉइंट से स्टार्ट होगा। 50% आपने पुण्य किया भक्ति से संबंधित तो 51 से स्टार्ट होगा, 91 से स्टार्ट होगा। ज्ञान मतलब जो भगवान को जानने का ज्ञान है, लेकिन वो भी शुष्क ज्ञान, जो भक्ति के से संबंधित ज्ञान नहीं है। जैसा अभी जो पढ़ रहे हैं भी ज्ञान है पर ये भक्ति संबंधित है, जो मायावादियों को ज्ञान, निर्विशेषवादियों को ज्ञान के बारे में बोला जा रहा है। तो भक्ति उन्मुखी सुकृति बोला जाता है, भक्ति उन्मुखी पुण्य कहा गया इसको। लेकिन ध्यान से सोचिए कि ये भी भक्ति नहीं है, भक्ति उन्मुखी सुकृति भक्ति करने में सहायता कर सकती है पर वो भक्ति नहीं है। जैसे मान लीजिए हम रथ यात्रा में जाते हैं तब देखते हैं कितने लोग रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, अनजाने में वो क्या करते हैं रस्सी खींच देते हैं, उसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति। अनजाने में क्या मिल रहा है उनको, पुण्य कर्म। वो जब पुण्य कर्म पूरी तरह भर जाएगा तो जब जान बुझ कर समझ सोच समझ के निर्देशन में जब करता है वो कार्य तो उसको बोलते हैं भक्ति, है ना। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आप अनजाने में कंपनी में एक कोई कार्य कर दिया तो आपको कोई सैलरी नहीं देगा, लेकिन उसके निर्देशन में करते हैं अपने बॉस के तो पूरी सैलरी मिलती है, है ना। वैसे ही है, अगर आप निर्देशन में करते हैं, यानी दो बॉक्स हैं, एक बॉक्स को बोला गया है पुण्य कर्म, एक बॉक्स को बोला गया भक्ति, काम एक ही है, पर जैसे ही गुरु के निर्देशन में करते हैं तो भक्ति के डब्बे में चला जाता है वो कार्य का फल, और जब गुरुदेशन में ही करते हैं बोले हम मर्जी से करेंगे, किसी से कोई लेना देना नहीं, तब तो कहाँ जाएगा वो, पुण्य के डब्बे में। इसलिए हर वस्तु को कन्फर्म कराना जरूरी है। तो प्रश्न आ सकता है क्या भौतिक संसार की वस्तु को कन्फर्म करें? अगर भौतिक संसार की वस्तु आपके आध्यात्मिक जीवन पर असर डालने वाली है तो भी आध्यात्मिक उसका फल प्राप्त होगा। मान लीजिए आप एक घर खरीद रहे हैं अंडमान निकोबार में, तो क्या होगा, आपकी भक्ति नष्ट होने वाली है अंडमान निकोबार में, तो कोई भक्ति नहीं मिलेगा आपको, नहीं है। भौतिक घर खरीद रहे हैं, पैसा भी है लेकिन फायदा नहीं मिल रहा है। तो उससे पूछना चाहिए, जैसे भक्त की नौकरी लगी अंडमान निकोबार में एयरपोर्ट अथॉरिटी में, तो उसने पूछा नहीं गुरु महाराज से कि महाराज मैं मान जाऊं कि नहीं, नौकरी करूं कि नहीं, नौकरी में नहीं लालच था, चले गए वहां गए तो फंस गए। माला बड़ी मुश्किल से हो रही थी, दीक्षा हो चुकी थी, माला दीक्षा होने के बाद में मुश्किल हो रही थी। तो मेरे पास मेरे को फोन किए, जब वो घबरा गए तुमसे जब मुझे फोन किए, तो मैंने बोला कि मैंने पहले ही मना किया था वहां पर मत जाओ, फिर भी आप महाराज से पूछ के जाना चाहिए। फिर भी महाराज से मैं उनको मिलाने लगे। महाराज ने कहा कि वहां प्रचार करो, भक्त बनाओ, अपने आप की साधना होगी। तो प्रचार किया नहीं, फिर जब उनके आगे का पालन नहीं किया फिर भक्ति नष्ट होने लगी। ठीक है, फिर जब उन्होंने थोड़ा प्रचार करना जैसे प्रारंभ किया तो उनका सिलेक्शन होगा आईएएस में, दिल्ली में आ गया। दिल्ली में आ गया, गाजियाबाद के मंदिर बेस में रहते हैं। आप समझ रहे बात को, कि जब आगे का पालन करते हैं, निर्देशन में कार्य करते हैं तो भगवान उसको सरल बना देते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, निर्देशन होना चाहिए, हर वस्तु निर्देशन होना चाहिए। यहां बोला गया है यदि वह दृढ़ता से इसका पालन नहीं करता तो अवश्य ही प्रभात का दोषी होगा। प्रभात मतलब पागलपन। पागलपन किसको कहा जाता है, जैसे किसी एक पागल की परिभाषा क्या है, किसको बोलोगे पागल है बताओ, स्वेच्छा से तो आप भी करते
फॉलो करना।
नहीं, पागल किसको बोलते हैं, पागल किसको बोलेंगे, सामान्य
बिना सोचे समझे काम
करता है, हम भी पागल है। इसका मतलब
तो सामान्य लोग जो करते हैं उसका
विपरीत
उल्टा करेंगे,
तो हम भी पागल हैं। संसार के लोग
भक्ति
कर ही नहीं
रहे, भक्ति के
लिए जो नहीं करता है पागल कौन है, पागल पागल समझते हैं मैड, तो कौन है पागल, किसको बोलेंगे पागल की परिभाषा, हम पागल तो बोल लेते परिभाषा नहीं पता।
तो नॉर्मल करते काम
ठीक है, हाँ जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है और जो आता है वो करते जा रहा है, बुद्धि प्रयोग नहीं कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं है, क्या सही क्या गलत है इसका अनुमान या ध्यान लगा के बुद्धि का प्रयोग किए बिना वो कार्य को करते, उसको पागल ही बोलते हैं, है ना, और किसको पागल बोलते हैं। लेकिन जो हम लोग को बोला जाता है कि पागल है, जो बहुत ही संसार की दृष्टि में, ये तो उन्माद प्रमाद प्रमाद बताए, लेकिन ये प्रमाद वास्तविक प्रमाद नहीं है। ये क्या है, एक चीज को लेकर कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता है या करता है उसको भी पागलपन बोला गया। जैसे कोई व्यक्ति बोलते हैं पागलों की भांति भगवान के पीछे दौड़ रहा था, आपने देखा पागल खाना में जाएंगे तो कोई छाता ले घूम रहा है, इतनी बारिश हो रही है तो क्या कर रहे, वैसे बोलेगा वो कोई बिस्तर नीचे घुसा हुआ है, कोई खिलौना खेल रहा है, तो एक चीज को लेकर वो, हाँ हाँ वही सन की दूसरी भाषा है और कुछ नहीं। तो यहां बोलते हैं कि जो दृढ़ता से इसका पालन नहीं करता, किसका, जो व्रत उसने लिया है उसको पागल बोला गया, प्रमाद बोला गया, प्रमाद का दोषी बनता है, उसको बोले पागल है। इसका मतलब यह कि जो आपको बताया गया था उसमें बुद्धि का प्रयोग किए बिना अपनी इच्छा से कार्य कर रहे हैं, है ना, तो पागल बना। इसलिए हमें प्रभा जी बोलते यदि हम अपराधों को बढ़ावा देंगे, क्योंकि ये जैसे अपने नियम बना लिया, आपने एक विग्रह रख लिया घर पर, अब विग्रह की सेवा करने का नियम बना लिया पर सेवा नहीं कर रहे हैं, तो क्या अपराध नहीं होगा, अपराध की विधान के लिए बताएं। जैसे आपके किसी घर में बुला लिया, आप हमारे यहाँ खाने पर आइए, आप खाने पर आ गए, जैसे घर में आ गए, हाँ आ गए, यस क्या काम है, फिर आपने खाने में बुलाया था, ओ क्या अब आज नहीं है हमारे यहाँ खाना, सॉरी वापस जाइए, तो कैसे लगेगा उसको, बोलिए पागल हो तुम, अजीब आदमी यार बुलाया मुझे, हमने घर में भी मैंने चूल्हा जलाया नहीं था, है कि नहीं। तो वैसे ही आपने एक भगवान की सेवा ले ली है, किसी चीज को सेवा ले ली है, छोड़ रहे हैं तो लिया क्यों, तो वो चीज भक्ति में मत बढ़ाइए जिसका पालन नहीं कर सकते। तो बोलेंगे पूजी फिर बढ़ेंगे कैसे, तो प्रगति कैसे करेंगे। इसलिए प्रगति करने के लिए गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। ऐसे कोई व्यक्ति मान लीजिए 10 माला करता है, उसको बोलेगा तुम कल से 12 माला करो, वो क्या बोलेगा 12 माला का प्रयास करो, 1 महीना तक अगर होता है तो 12 माला कंटिन्यू करना, तब आप 12 माला नहीं कर पाते हैं, 1 महीना छोड़ते हैं तो आपको अपराध नहीं लगेगा, क्यों, आपको एक महीने का टाइम दिया गया था, लेकिन जब आप पहली सोच लेते नहीं मैं जिंदगी भर भारामाला करूंगा, ठीक है, अब भारामाला से कम होता है तो आपको अपराध लग जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, भक्ति के नियमों का उल्लंघन कर दिया। एक नियम यही है, लिखा नहीं है, जितना आवश्यक होते हैं। ये कौन सा नंबर आया, कितने नंबर हो गए, सातवां नियम है ना। तो सातवां नियम ही बताया जा रहा है कि नियमों का पालन करना चाहिए जितना आवश्यक हो, यानी जो आपने निर्णय लिया है उसको पालन करें। अनिष्ट भी होता है, अनिष्ट उतना गंभीरता नहीं होता जितना वैष्णव अपराध से होता है, पर ये सेवा अपराध है। भक्ति में प्रगति नहीं करेगा, भक्ति में प्रगति नहीं करेगा। अनिष्ट उतना नहीं होता है क्योंकि वैष्णव अपराध से अनिष्ट ज्यादा होता है। वैष्णव अपराध से तो एक जन्म में जीवन भी जा सकता है उसका, नरकों की यातना भी होती है, कोढ़ भी हो सकता है, भयंकर बीमारी होती है। वैष्णव अपराध इतना जघन्य है, पर सेवा अपराध में भगवान उतना अपराध सीरियस नहीं लेते हैं। जैसे माँ बाप को बच्चे मारते हैं तो माँ बाप कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन आस पड़ोस के लोग कुछ ना कुछ बोल लेते हैं, बड़ा भाई बड़ी बहन एक थप्पड़ मार भी देगा, है ना। लेकिन अगर मतलब भगवान वैसे बताएं जैसे भगवान सहन कर लेते हैं, पर देखते हैं कि बेटा अपने भाई को मार रहा है तो माता पिता हस्तक्षेप करते हैं, है ना। खासकर उस बेटे को जो सिंसियर है, अच्छा है, तो उसको बोलते हैं क्यों मार रहे हो इस भाई बेटे को। तो इसी के अनुसार इसलिए बड़ा नियम जो है ना पालन बड़ा अच्छे से करना चाहिए, गंभीरता से, क्योंकि नियम का पालन अच्छे से नहीं करते हैं तो क्या होगा, त्रुटियों के कारण अपराध होगा, आपके अपराध की जो चेतना वो की वृद्धि होगी। आप समझ रहे हैं, अपराध करने की जो टेंडेंसी बढ़ती है, जो चीज की जिसकी चीज को आप ज्यादा करते हैं उसकी टेंडेंसी बढ़ती है। जैसे लोगों का गुणगान करते हैं तो गुणगान करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, ठीक है। अगर अपराध करते हैं तो अपराध करने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो जैसे ही आप अपराध करते हैं विग्रह के प्रति, धीरे धीरे आपके नाम के प्रति अपराध, वैष्णव के प्रति अपराध बढ़ते जाता है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपराध से बचने का प्रयास करना पड़ेगा। तो पहला यही चीज स्टार्ट होता है अपराध कहां से, कि हम व्रत कल बनाए हैं लेकिन उसका पालन नहीं कर रहे, ठीक है। और इसमें बोलते हैं अच्छा होगा यदि अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने नियम को स्थिर कर लिया जाए और निश्चित रूप से इस व्रत का पालन हो, इससे आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होंगे। अच्छा ये होगा कि हम एक ऐसा नियम बनाएं जिसको हम पालन कर सकें, जब उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, आपको लगता है आत्मविश्वास हम इसे ज़्यादा कर सकते हैं तो बढ़ा लीजिए। जैसे कि एक माता जी ने मुझे पूछा कि प्रभु जी मैं गौरवित विग्रह रख सकती हूँ, तो मैंने ही प्रश्न क्रॉस पूछा, आप सेवा कर पाओगे, आपको लगता है आप कर पाओगे, तो बोलते हैं हाँ कर लूंगी, बोला अगले 40 साल तक। तब उसका आत्मविश्वास घबरा गया, नहीं ब्रो जी लगता है नहीं लगता है, तो बोला फिर मत रखिए, अगर आप गौर त्याग लाओगे 10 दिन बाद वापस कर दोगे तो विग्रह गल ग्रह बन जाएगा। गल ग्रह मतलब बकरी के यहाँ पर एक मांस का होता है टुकड़ा लटक रहता है, उसको बड़ा लोड लगता है, उसको आपको लोड लगने लगता है कि विग्रह ले आए हैं ना, ला नहीं पाते हैं, दिला नहीं पाते हैं, किसी को दे दें, नौकर बोलते तू कर ले, नौकर करता है। तो भक्त ठाकुर बोलते हैं इससे अच्छा है कि कुत्ता पाल लेना चाहिए, अगर विग्रह की सेवा के नौकर से करवा रहे हो तो कुत्ते को तो आप खुद करोगे। तो विग्रह की सेवा सी है, विग्रह जैसे सेंटर में प्रोग्राम 4-5 बना खोल दिया, मंगल आरती का प्रोग्राम रख लिया, मंगल आरती में भक्त नहीं आ रहे, खुद ही नहीं आ रहे, रखा प्रोग्राम हमने बड़ा जोश जोश में वहां पर इनकलाब जिंदाबाद नारे लगा के खुलवाया था, है ना। सेंटर खुल गया सर, नया सेंटर खुल गया, नया सेंटर तो बड़ा जोश जोश में खोल दिया, सबको अनाउंसमेंट कर दिया कि गुरु जी हम तो इंचार्ज भी हैं वहां के, लेकिन वहां दर्शन नहीं होते प्रभु के, जिस प्रभु जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, तो अपराध तो पक्का लगेगा। हम छोड़ देंगे, आप छोड़ देंगे, भगवान चुन चुन के बदला लेते हैं। और भगवान की लाठी में आवाज नहीं होता है, दर्द होता है बस। ठीक है, भगवान को वादा करके भाग नहीं सकते आप, है कि नहीं? भगवान को धोखा नहीं दे सकते, भगवान को धोखा नहीं दे सकते, इवन सोचना भी नहीं स्वप्न में। सबसे बड़े छलिया हैं संसार के, मतलब पूरे विश्व के, पूरे सृष्टि के सबसे बड़े गोलीबाज वही है, अगर हम लोग गोली देने में माहिर सोचते हैं तो। भगवान को धोखा नहीं दे सकते, इसलिए कम से कम भगवान से तो ऑनेस्टी करो। किसी को धोखा दे सकते हो, पुलिस वाले को धोखा दे सकते हो, डॉक्टर को धोखा दे सकते हो, बच्चे को, माँ बाप को, पड़ोसी को, मित्रों को, भक्तों को भी धोखा दे सकते हो, भगवान को नहीं दे सकते। तो भगवान से चीटिंग मत कीजिए, यही बताएगा। तो ऐसा ऐसे बात ही क्यों स्टार्ट करते हैं, ऐसे दिखावा ही क्यों करते हैं कि हम कर सकते हैं? कभी कभी हम दिखावा के लिए करते हैं, है ना, दिखावा के लिए हम, कि हम भक्त पर कितने उन्नत हैं ये दिखाने के लिए कभी कभी हम लोग ऐसा चीज जिम्मेदारी ले लेते हैं। सब कर रहे हैं इसलिए हम भी विग्रह लिया है क्या? देखा है, एडवांस भक्त इनके भी घर में विग्रह है, आपके यहाँ कौन सा विग्रह है? लड्डू गोपाल, हमारे तो घर गौ मिथाई है, हम राधा कृष्ण है, हम तो हायर लेवल वाले। अच्छा, भोग कितने बजे लगाते हो? ठाकुर जी को जब मन करे हम खिला देते हैं, इसमें क्या है? ठाकुर जी से पूछा कभी? गुरु से पूछा कभी? है ना, ऐसे कई बार भक्त लोग मायापुर से वाले आते हैं नरसिंह कवच और पहन लेते हैं। नरसिंह कवच के साथ एक पर्चा आता है, वो कोई नहीं लेता है, पर्चा होता है, पर्ची में लिखा होता है कि इसको बिना गुरु के आगे के नहीं पहनना, लिखा रहता है, और साथ में नियम लिखे रहते हैं कैसे पूजा करें, गुरु की पूजा करें, गुरु से परमिशन ली, विधि कैसे पहनने की। ले आते हैं शौक के तौर पर, पहले थम्बने भी तावीज पहनी है, गुरु नरसिंह कवच सुरक्षा हो जाएगी। गुरु की कृपा के बिना सुरक्षा नरसिंह भगवान देंगे आपको सुरक्षा? नहीं। प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान का दर्शन कैसे हुआ? नारद मुनि के कारण ना, गर्व श्रवण किया था उन्होंने, तभी तो स्मरण कर पाए। तो इसलिए हम ऐसे नियम को अपने जीवन में आमंत्रण ना दें जिसका पालन ना कर सके। तो प्रगति करने के लिए क्या है, जो ऊपर से आदेश मिलेगा उसको करने का प्रयास करें, तो आपको अपराध नहीं लगेगा। जैसे बोलते हैं वृंदावन जाओगे तो परमिशन पे जाना चाहिए, क्या फायदे है इसके? बिना परमिशन जाने के क्या लाभ है? पूरा संग करना पड़ेगा। भक्तों के साथ नहीं जाएंगे तो क्या होगा? आप जो जैसे मान लीजिए ग्रुप पे गए तो उनके जो लीडर रहता है ना, सारा अपराध जितने भी पब्लिक करती है वो सब लीडर को लगता है, तो जिम्मेदारी लेकर आया, उसको लेकर आया, इसलिए जब वो लेकर गया तो जब वो देखता है लोग पालन नहीं कर रहे हैं तो उसको टोकता है ना। और मान लीजिए वो लेके गया है, टोक नहीं रहा है, वो अपराध कर रहे हैं तो अपराध उसको लगेगा, जिम्मेदारी उसकी, क्योंकि वो लेके गए। जैसे आप अपने बच्चे के साथ जाते हैं और बच्चा किसी को किसी पर गलबड़ कर रहा, थूक रहा है, कुछ हाथ मार रहा है, तो माँ बाप को बोलते हैं कैसे बच्चा है तुम्हारा, सवाल करते नहीं है, ठीक है। और मान लीजिए बच्चा अलग जा रहा है, अलग अकेला, और किसी को छेड़ रहा है तो बच्चे को थप्पड़ लगा देंगे नहीं। तो जो जिम्मेदार व्यक्ति के साथ जाते हैं, इसलिए भक्तों के साथ वृंदावन जाना चाहिए, अकेले नहीं, यही विधि है। इसी अनुसार तो ये सब नियम जो बताए गए भक्ति के, अगर हम सिंसियरली इसका पालन करते हैं ये सोचकर जितना आवश्यक उतना ही करना, तो हम लोग भक्ति उन्नति कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो हर बार की तरह एक्टिविटी करेंगे, इस बार तो एक्टिविटी में थोड़ा चेंज है। पांच मिनट, ठीक है। इस एक्टिविटी में क्या करना है, हम पैर चुनेंगे, फिर से लोग चुनेंगे, लेकिन एक दूसरे का गुणगान नहीं करेंगे, किसी तीसरे का गुणगान करेंगे, ठीक है, समझ में? और किसका गुणगान करेंगे? जिसके बारे में गुणगान नहीं करते, जनरली नहीं करते, ध्यान ही नहीं रखता कि उनका गुणगान करना चाहिए, ठीक है। तो उनका बैच के उनका दो लोग मिलेंगे, तीसरे गुणगान करेंगे, तीसरे को बैठा के नहीं, आप समझे बात है। जैसे मान लीजिए सुनील प्रभु हैं और राकेश प्रभु, ये दोनों बैठे हैं, तो किसी भी व्यक्ति को चुन लें, किसी दूसरे व्यक्ति को, वो कहीं बैठा हो किसी के साथ डिस्कस कर रहा हो से मतलब नहीं, आप बैठ कर गुणगान करेंगे गुणों का, ठीक है, रेडी। तो उसको सुनाने के लिए थोड़ी गुणगान करते, जब निंदा करते तब भी तो नहीं सुनता है। इससे क्या होगा, जब दो लोग बैठेंगे तो गुणगान करने की हैबिट होगी। अभी हमारे दो लोग बैठते तो निंदा करने की हैबिट है ना, जो भी मिलते हैं तो अरे प्रभु उसके बारे में सुना है, नई खबर आई है, अच्छा नई खबर है, सुनाना बहुत मजा आ जाए। आप कितनी जल्दी में मान लो गाड़ी है, ट्रेन छूट रही है, हाँ तो बोले प्रभु जी सुनते जाओ, प्रभु जी है ना उनके बारे में, अच्छा ट्रेन छूट जाना तो सुन के ही जाएंगे वो। तो वो चीज़ें खत्म हो जाएगी, हम भक्तों के बीच बढ़ेंगे गुनगान नहीं करेंगे, प्रभु जी वो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक के बारे में बोले प्रभु जी वो, हाँ मुझे भी अच्छा लगता है, फिर गुनगान जरूर, तो गुनगान की प्रैक्टिस करेंगे बैठ कर जबरदस्ती, ठीक है। सब लोग जा रहे हैं गुनगान नहीं करना, अच्छा नहीं लगा, बैठी बैठी बैठ के करना, कोई दिक्कत नहीं, पाँच मिनट बैठ के चाहिए सब लोग। अभी तो क्लास खत्म नहीं हुआ, क्लास तो खत्म होता 7:15 को, मान लीजिए मैं 7:15 तक लेक्चर देता तो बैठते, दूसरे को गुणगान करने में चिंता हो रही है कि नहीं राजेश को, 7:15 तक अगर प्रवचन होता तो बैठते ना, नहीं बैठते तो हैं 7:15 बीच चल रहा थे, भैंस खुल रही बैठने ही पड़ेगा, ठीक है। तो कितने लोग हैं, चलिए यहाँ कितने हैं,
7
और माता जी कौन चलेंगे, ज्योति माता जी भी चलेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। तो दो दो लोग अभी चुन लीजिए और तीसरे व्यक्ति गुणगान कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, खड़े हो जाइए अपने स्थान, कोई बात नहीं, तीन लोग बैठ जाना गुणगान करके, तीन लोग भी गुणगान कर सकते हैं, तीन लोग बैठ के चौथे का गुणगान करना, तीसरे का नहीं,
तीन बैठ के
पहले दो बैठ जाइए, आप लोग दो दो बैठ सकते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट। अलग अलग बैठिए, अलग अलग नहीं तो फिर मिक्स हो जाएगा, आप अलग बैठिए, दो दो लोग अलग अलग बैठिए, बैठ जाए इनके साथ, कोशिश कीजिए उनका गुणगान कीजिए जिनका जनरली नहीं करते हैं,
बहुत अच्छा।
दूसरा भक्त चुन सकते हैं, दूसरे किसी भक्त का गुणगान कीजिए, नाम यहाँ बहुत सारा है। नहीं इसी में रहिए, यहीं पर रहिए, भक्त चेंज करते हैं, नाम चेंज करते हैं। जैसे चांदो में प्रभु है, आप चांदो प्रभु का वो बोल सकते हैं, कैलाश प्रभु है, भरत प्रभु है, सीताराम प्रभु है। गुणगान में समय जल्दी बीत जाता है। चलिए आ जाइए, आज ही 5 मिनट डिस्कस करो, जल्दी आइए, आ जाओ, खुला मन को 2 मिनट बैठिए। कैसा लगा?
अच्छा लग
रहा था गुणगान करके।
प्रभु जी जब 10 दिन यहाँ नहीं थे, फोर्टलेयर में गए, तो जो आपने बोला सर, जो जो चीजें बोली वो मेरे मन में सारी थी, और हमने वहां पर तरस गए, मतलब किसी वैष्णव को देखने के लिए, हम कहते थे गलत आ गए, हमें यहाँ नहीं आना। तो यहाँ पे सबके चेहरे, मतलब भरत प्रभु, कैलाश प्रभु, सीताराम प्रभु, सबको मैं याद करता था। तो जब मतलब हम साथ में होते तो समझ में नहीं आता कि हम कितने कॉन्टेक्ट में हैं, कितने क्लोज हैं, क्या है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो पूरा
जब किसी को खोते हैं तब पता चलता है उसके वैल्यू क्या है। जैसे माँ बाप को खो जाते हैं या वस्तु खो जाती है तब याद आती है ना उसकी वैल्यू क्या है, अभी नहीं आती। तो इससे पहले कि खो जाए वस्तु, उसकी वैल्यू करना शुरू कर दो, गुणगान करना शुरू कर दो, भगवान ने तो ऐसे जगह भेज देंगे जहाँ गुणगान करने के लिए मजबूर हो जाओगे, है ना। आप तो वापस आने का चांस है, कभी कोई वापस आने का चांस नहीं होता। ऐसे स्थान में चलना होगा जहाँ पर बेस नहीं होगा, सेंटर नहीं होगा। ऐसे स्थान में चलना होगा जहाँ भक्त नहीं होंगे, तब तो गुणगान नहीं कर पाएंगे। तो समय रहते ही गुणगान कर लेंगे। और किसी का रिलाइजेशन छोड़िए मत, सब कुछ मिल सकता है, भक्तों का संग नहीं। रामानंद राय से पूछते ना चैतन्य महाप्रभु कि संसार में सबसे बड़ा धन क्या है, बोले भक्तों का संग। और सबसे बड़ा दुख क्या है, जब भक्तों से विरह होता है, भक्त छोड़ जाते हैं।
और प्रभु जी हमारे को एक ऐसा लगा कि अगले बार अगर हम कहीं ऐसी जगह जाना है तो भक्तों को संग लेके जाएंगे।
और स्थान में जाएंगे जहाँ भक्ति है,
भक्ति है,
अंडमान निकोबार नहीं,
तो वहां पे हमें लगा प्रभु जी कि यहाँ पे भक्त क्यों नहीं है। हमारे मन में ऐसा आया, एक स्टेजनेट का मंदिर भी था, उसमें भी गए, हमने कहा यहाँ कोई है नहीं, मंदिर इतना अच्छा बनाया हुआ है, जगह बहुत है। तो मैं
देखिए हमारी इच्छाएं अगर प्रबल होती है ना, जब भौतिक इच्छाएं, तो हमें वो भौतिक इच्छाएं हमारा मन उस स्थान पर ले जाते हैं जहाँ भक्त नहीं होते हैं। क्योंकि भौतिक इच्छाएं भौतिक स्थान में पूर्ण होगी ना, वहाँ भक्त होंगे नहीं। लेकिन आध्यात्मिक इच्छाएं जब प्रबल होगी तो हम मंदिर जाएंगे। जैसे भक्त बोलते हैं प्रभु जी हमें छिपीवाड़ा ले चलो, छिपीवाड़ा मंदिर में, हमें द्वारका मंदिर ले चलो, तो उसके मतलब उसकी इच्छाएं आध्यात्मिक है, तभी तो भक्तों के बीच में जाना सोच रहे हैं। मायापुर ले चलो, वृंदावन ले चलो, नाथद्वार ले चलो। जैसे मुझे फोन आया मंदिर से, मोहन जी बोल रहे हैं इस बार नाथद्वार लेके नहीं चल रहे, लेके तो आप भी जाते हो, आप समझे बात को। तो आध्यात्मिक इच्छा है तो वहां जाने की इच्छा होती है। जब भी मुझे कभी बोलते हैं अयोध्या चलो, नैमिषारण्य चलो, अशोकधाम चलो, कभी बोलते हैं कि मुझे मूवी दिखाने ले चलो, कभी बोलते हैं, कभी नहीं बोलते, क्योंकि इनकी इच्छाएं वैसी नहीं है। सारे भक्तों को बिन्दा ले जाते हैं घसीट के, चलो चलना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक इच्छाएं हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बौद्धिक इच्छाएं तो फिर LTC का दुरुपयोग होगा। हाँ वो देता है, सहमति भी देता है, हाँ ऐसी है, हम तो बहुत जानते ही जानते हैं,
नई चीज वो बताते हैं वो, ये भी है उसके अंदर। और जब गुणगान करते हैं तो दूसरे व्यक्ति अगर कोई सोच भी रहा होगा ना कि उसके अंदर ये अवगुण है, तो वो उसको व्यक्त नहीं करेगा, बताएगा इसके मन में जो है।
जैसे मान लीजिए भाई बात सही है ना, कि दो लोग गुणगान, एक व्यक्ति गुणगान कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति मान लीजिए कभी उसका कमी देखा भी हो, तो अब वो जब सबसे मिलेगा ना तो बोलेगा उसके अंदर तो वो गुण था यार, पता चला मुझे अभी, अच्छी बात नहीं है ना। तो गुणों को स्प्रेड कीजिए, जैसे मैं गुण जानता हूँ सबको बता दीजिए, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल राकेश प्रभु के अंदर एक गुण है, कोई मैं जान गया हूँ तो मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ इसलिए, लेकिन आप सब नहीं जानते इसलिए हो सकता है रेस्पेक्ट नहीं करते होंगे, इनकी निंदा भी करते होंगे। लेकिन मैं सब ये न्यूज़ फैला दूँ कि इनके अंदर ये गुण है तो आप लोग भी वही चीज़ करने लगोगे जो मैं करता हूँ रेस्पेक्ट, तो क्या होगा। इस प्रकार से जैसे मुझे 10 पता है पर आपको वो 10 नहीं पता है, आपको कोई और 10 पता है इनके गुण, तो 20 गुण इनके अंदर है मान लीजिए, आपको 10 पता है मुझे पता है, पर हम सब मिलकर सबको फैला दें इनके अंदर के गुण क्या है, तो क्या होगा। वो 20 गुण सबको बताओगे, मैं 10 के मात्रा में रेस्पेक्ट करता था, 20 का कर लूंगा, ये भी 20 करेंगे, सब 20 करने लगे, तो इनके प्रति कोई निंदा नहीं करेगा। यही तो होता है, प्रभुपाद के बारे में हमने सिर्फ गुण ही गुण सुना है, तो प्रभुपाद जी को प्रणाम करते थे, अनुभव महाराज के बारे में सुना है, भक्त के बारे में सुना है, मंदिर के ब्रह्मचारी के बारे में सुना है, मोहन रूप जी के बारे में सुना है, तब उनको रेस्पेक्ट करते हो। लेकिन चूंकि हमने एक दूसरे की निंदा कर रखी है तो एक दूसरे का रेस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन वही सोचो अगर हम दूसरे के सब लोग का गुणगान करेंगे तो एक दूसरे का रेस्पेक्ट भी होगा, ऑटोमेटिकली होगा। निंदा करने के बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, गलती होती होती रहती है, लेकिन देखो गुण कितना है, ऐसा सोचने लगेंगे, है ना। तो ये गुणगान करना की आदत डालनी पड़ेगी। अभी तो हम लोग जबरदस्ती 15 मिनट की एक्टिविटी करा के करवाते हैं, नेचुरली होना चाहिए। और माता जी भाई रिलाइजेशन क्या हुआ, गुणगान करने का शब्द मिल रहे थे कि नहीं। कभी कभी होता है, हाँ ठीक तो है, अच्छे तो हैं, क्या करें, किंतु परंतु लेकिन ये सब चलता रहता है। वो माता जी कितनी अच्छी ना, हाँ अच्छी तो है, गुण क्या है? गुण तो पता नहीं आ रही अच्छी है, अब गुणगान करना क्या करें, गुणों को देखना देखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। कई गुण होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति गुण खोजोगे तो गुण मिल जाएंगे, जैसे कई गुण होते व्यक्ति भले बाहर से कितना भी गुस्सा करता हो अंदर से बहुत कोमल रहता है, लेकिन जब उसके साथ रहेंगे तभी पता चलता है। कई लोग बड़े मन साफ होता है, एकदम क्लीन, माता जी सिमलेश माता जी एकदम क्लीन है ना, कोई दिखावा नहीं है, ठीक महसूस हमने सब किया होगा, लेकिन जो गुणगान की बात आती है तो हम शायद भूल जाते हैं। महसूस किया कि नहीं किया? क्लीन है, जैसे प्रभु जी का खुला होने का सिंपल हृदय है।
प्रभु
ये
गुणगान
तो भक्तों के बीच में करना पड़ेगा,
हो सकता है कि जैसे कोई पर्सन है 10 साल से उनको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ अच्छे है सब, लेकिन कोई पर्सन आके उनके बारे में कुछ अवगुण बता देता है तो उसी टाइम से मेरा नजरिया चेंज होता
है, वो अवगुण ही दिखने लगते हैं, ये बात सच है।
फिर सर अच्छा भी कर रहे हैं तो तुम्हें बुरा लगता है, क्योंकि
जबकि वो अवगुण उसमें नहीं होगा तब भी। आपको पता है ये अद्भुत बात है, आपने किसी की निंदा सुनी है ना, उसके अंदर वो गुण नहीं है फिर भी आप उसके अंदर ढूंढ लोगे, क्योंकि आपके दिमाग में भर दिया गया वो कीड़ा, उसकी वजह से वो चश्मा लगा दिया लाल वाला आपके अंदर, संसार चश्मा लाल नहीं है, आपके चश्मा पहना के चले गए क्योंकि लाल है पूरा, आप देखते हाँ लाल ही लाल है, सचमुच लाल है, ऐसे लगने लगता है जबकि लाल नहीं है। इसलिए निंदा तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, विष है आध्यात्मिक जीवन में, बहुत बड़ी बाधा है निंदा। गुणगान जो है ना वो एकदम अमृत के समान है, आप जितना गुणगान करोगे ना, जितना गुणगान करो उतना तेजी से प्रोग्रेस करोगे, करके देख लीजिए। हमने देखा है जो भक्त हमेशा गुणगान में लग रहा था ना, अभी हम लोग द्वारका गए थे ना सब हम लोग भक्त लोग, आपको याद होगा हम लोग का प्रवचन, उनका प्रवचन देखा था हम लोग लोगों का, उन्होंने खुद बोर्ड पर श्लोक लिख रहे थे। मैंने पूछा प्रभु जी आप लिख रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट ने मंदिर के तो भक्त लोग विश्राम कर रहे हैं, ये नहीं बोले कि आलसी है सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, मतलब विश्राम कर रहे हैं मतलब थक गया ना बेचारे, थक जाते हैं तो गुणगान कर रहे हैं, कमियां नहीं दिख रहे उनके अंदर, ऐसे वो ऐसे करते हैं, सब चीज खुद ही करेंगे लेकिन किसी को शिकायत नहीं करेंगे। तो ये भावना जब ये कारण से क्या है, वो संतुष्ट है, वो सुखी है, इतना करके भी सुखी है, और हम लोग थोड़ा सा करके भी थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं, या तो मॉर्निंग प्रोग्राम आ गया, या एक सैटरडे प्रोग्राम चला लेते, उसी में इतना ज्यादा बिल्डर हम ही लोग करें क्या, कोई और करता ही नहीं है, इतना बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमने कहा गुणगान किया नहीं, गुण देखे नहीं, वो पूरा मंदिर चला रहे हैं अकेले, लेकिन खुश है नहीं। फैमिली में लड़ाई होती है, तुम तो कुछ करते नहीं है, मुझे ही करना पड़ता सारा, झगड़ा क्यों होता है, क्योंकि हम सोचते हैं हम ही करता है, गुण देखा नहीं। और पति सोचने लगे पत्नी इतना सेवा करती है घर में, जैसे एक उदाहरण बताता हूँ समाप्त करेंगे। एक बार एक व्यक्ति ऑफिस से आता है और टेबल पर बैठता है खाने के लिए, सुबह जब ऑफिस आकर लेटता है सुबह जाता है, तो जब नाश्ता करने जाता है तो पत्नी को नाश्ता देती है ना, टोस्ट रहता है वो जला हुआ रहता है, एकदम जला हुआ काला, तो उठाता है टोस्ट में मक्खन लगाता है अच्छे से, खाने लगता है, खराब वाला खाते रहता है, क्योंकि पति खूब रोती है, बोले क्यों रो रही हो, तो रोती हुई चली जाती है, तो बोलती पापा मम्मी क्यों रो रही थी, बच्ची पूछती है, बोले पता नहीं मम्मी को कुछ याद आ गया, वैसे बोलते बोलते हैं कि पापा लेकिन आप ये जला हुआ टोस्ट क्यों खा रहे हो, आपने मम्मी को कुछ बोला नहीं, तो बोले मम्मी दिन भर इतना मेहनत करती है, अगर गलती से एक बार जल गया तो क्या दिक्कत है, अना इतना मेहनत करती है, इतना ध्यान रखती है, तुम्हारे लिए ध्यान रखती है, सब कुछ रहती। तो बोलती हाँ मेरे पापा कितने अच्छे हैं, तो मम्मी को जाके बताती है, मम्मी आप क्यों रो रही थी, बोलते मैं रो रही थी इसलिए कि पापा इतना मेहनत करते हैं, दिन भर ऑफिस में रहते हैं, कमा के पैसे लेकर आते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, और मैं उसको जलावन टोस्ट खिला रही हूँ, मैं कैसी स्त्री हूँ? मुझे भी ध्यान रखना जो दिन भर मेहनत करते हैं। अब देखिए दोनों एक दूसरे को गुण देख रहे हैं, तो झगड़ा बिल्कुल नहीं है, दोनों एक दूसरे के लिए इतना प्रेम है। अब वही बोलेंगे मैं ही मेहनत करते रहूँगी घर में, क्या खाओ तुम्हें खाना पड़ेगा जलावन टोस्ट। बोलेगा मैं मेहनत करता हूँ, कमा के आता हूँ, और तुम मुझे जला टोस्ट खिला रही हो, तो लड़ाई झगड़े होंगे। तो दोषी कौन है? दोनों है, जो कमी देखता है वही दोषी। ठीक है, तो अच्छा देखना, अच्छा देखिए, अच्छा चश्मा पहनिए सब कुछ क्लियर दिखेगा, खराब चश्मा पहनेंगे सब कुछ काला दिखेगा। अब रात को काला चश्मा पहनेंगे जाएंगे तो किसका दोष है? क्लियर चश्मा पहनिए जिसमें पावर हो। ठीक है, हरे कृष्ण। हट जाओ वहां से, बोला आपको बुराई नहीं सुननी। कुछ लोग होते हैं सही बोल रहे हैं, कुछ लोग होते हैं अरे सुनो सुनो सुनो
नहीं तो बुराई। कई बार होता है सीधे बोलते हैं, मंदिर पर भी फेस मिलता है या फिर बाहर जाना है।